दोस्तों, मेरे काबिले एहतराम बुजुर्गों, नटखट बच्चों, प्यारी बहनों और भाइयों, मैं हूं आपकी मेजबान इरम इमरान और आप समाप्त फरमा रहे हैं इस वक्त रेडियो वेरितास की उर्दू सर्विस। दोस्तों, हमारी आवाज को दिल से कबूल करने का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे प्रोग्रामों को पसंद करने का बहुत शुक्रिया और जी हाँ, आपके प्यार भरे पैगाम अरसाल करने का भी शुक्रिया। सामईन, आज सोमवार है और आज के प्रोग्राम सुनने से कबल समाप्त फरमा लीजिए हमारे पता जात। दोस्तों, अगर आप हमारे प्रोग्रामों को ऑनलाइन सुनना चाहते हैं तो विजिट कीजिए urdu-veritas-asia.org। और दोस्तों, अगर आप फेसबुक पर हमारे साथ जुड़े हैं तो प्रोग्राम सुनिए और हमारा पेज भी जरूर लाइक कीजिए, जो कि है आरवीए उर्दू सर्विस के नाम से। प्रोग्राम सुनिए और जी हाँ, इसे लाइक करना और इन पर कमेंट करना हर किस्मत भूलिएगा। यूट्यूब पर हमारा चैनल है आरवीए उर्दू सर्विस के नाम से। प्रोग्राम यूट्यूब पर भी आप सुन सकते हैं। हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जो हमारे दोस्त ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हैं, हमें आरवीए उर्दू सर्विस से फॉलो कर सकते हैं और प्रोग्रामों से लुत्फंदोज हो सकते हैं। दोस्तों, आज मंगल है और आज के रोज आप प्रोग्राम समाप्त फरमा सकेंगे नगमा सहे और रोशन राहें। दोस्तों, आपको बताते चलें कि ये प्रोग्राम फादर कैसर फेरोज की जेर निगरानी तैयार किए गए हैं। तो चलिए समाप्त फरमाइए आज के प्रोग्राम।
हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसका 14:13-21 आयत तक। उस वक्त यीशु योहन्ना की मौत की खबर सुनकर वहां से कश्ती पर अलग किसी वीरान जगह को रवाना हुआ और जब हजूम ने सुना तो वो शहरों से पैदल उसके पीछे गया और उसने उतरकर एक बड़ा हजूम देखा और उसे उन पर तरस आया और उसने उनके बीमारों को शिफा बख्शी। और जब शाम हुई तो शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा कि जगह वहरान है और अब वक्त गुजर चुका है, हजूम को रुखसत कर ताकि गांव में जाकर अपने लिए खाना मोल लें। पर यीशु ने उनसे कहा, इनका जाना जरूर नहीं, तुम ही उन्हें खाने को दो। मगर उन्होंने उससे कहा कि यहाँ हमारे पास 5 रोटियों और 2 मछलियों के सिवा और कुछ नहीं। तो उसने कहा कि उन्हें यहाँ मेरे पास ले आओ। और उसने हजूम को घास पर बैठने का हुक्म दिया। फिर उसने वो 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और आसमान की तरफ देखकर बरकत दी और तोड़कर रोटियां शागिर्दों को दी और शागिर्दों ने हजूम को, और वो सब खाकर सिर हो गए और उन्होंने टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई और औरतों और बच्चों के अलावा खाने वाले तकरीबन 5,000 मर्द थे। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, हेरोदेस ने गलती से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को यीशु समझ लिया। यीशु हेरोदेस के वहशीपन को जानता था, इसलिए वो गलील को चला गया। वो तन्हा रहना चाहता था, लेकिन जल्द ही लोगों की भीड़ उसके गिर्द जमा हो गई। उसने बीमारों को शिफा बख्शी और उन्हें निजात की खुशखबरी सुनाई। लोगों को वापस भेजने से पहले उसने उन्हें खाना खिलाया। उसने न सिर्फ उनकी रूहों की फिक्र की बल्कि उनके बदनों की भी फिक्र की। गौर करें कि किस तरह शागिर्दों ने अपने उस्ताद के साथ मिलकर काम किया और किस तरह बचे हुए टुकड़ों की हिफाजत की गई। सिर्फ यही एक ऐसा मौजज़ा है जो कि चारों अनाजील में दर्ज है। यूहन्ना की अंजील में इस मौजज़े के फौरन बाद जिंदगी की रोटी का पैगाम आता है और उसमें इस मौजज़े के मायने बयान किए गए हैं। यीशु जिंदगी की रोटी है। वो न सिर्फ जिंदगी को कायम रखने वाला है बल्कि अपनी जिंदगी को देने वाला भी है। ये जरूरी है कि हम हर रोज मसीह के जिंदा कलाम को ईमान के वसीले से अपने दिलों में जगा दें ताकि हमारी रूहों को ताजगी मिलती रहे। आमीन।
सच और हक की आवाज के दोस्तों, प्रोग्राम रोशन रहे लिए आपके खिदमत में हाजिर हैं सारा जॉन और फ्रांसिस जेवियर। मोहब्बत और सलाम कबूल फरमाइए।
सुनाइए दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे और हर अच्छे अमल में पहल करने की कोशिश करते होंगे, यानी मुस्कुराने में पहल, किसी की तारीफ करने में पहल, किसी को माफ करने में पहल। खुदा करे कि उसकी बरकत हासिल करने की फहरिस्त में भी आपका पहला नंबर हो।
साथियों, फ्रांसिस ने बहुत ही खूबसूरत दुआ दी है आपको, लेकिन भाई मेरी तो आपके लिए एक और भी दुआ है। भला क्या? वो ये कि प्रोग्राम सुन के खत लिखने में भी आप पहल करें, क्योंकि आपके खतूत के हम हमेशा ही मुंतजर रहते हैं और उन्हें सराहते हैं।
साथियों, हमें हर अच्छी और खूबसूरत चीज को सराहना सीखना है, खो वो कितनी छोटी से छोटी क्यों ना हो।
फ्रांसिस, आपकी बात बिल्कुल सही है। मुझे इटली जाने का इत्तफाक हुआ। वो लोग किसी भी खूबसूरत चीज को देख के उसकी तारीफ करते हैं, मिसाल के तौर पे कोई फूल या पौधा या कोई और चीज हो, और हम जैसे इंसान जब इस पे खुशी का इजहार नहीं करते तो वो लोग बुरा महसूस करते हैं। वहां पे मैंने सीखा कि वाकई हर छोटी से छोटी खूबसूरत चीज पे खुशी का इजहार करना और उसकी तारीफ करना लाजमी है। ये सिर्फ बड़ी चीजों के लिए नहीं, बल्कि किसी के अच्छे अमल के लिए भी।
मेरे ख्याल में इस तरह दूसरे इंसान की हौसला अफजाई भी होती है।
आपने सही कहा, और उस शख्स में मजीद कुछ करने की हिम्मत पैदा होती है।
सर, आप कहीं ये तो नहीं कह रही कि हर प्रोग्राम सुनकर साथियों को भी प्रोग्राम की तारीफ करना है?
भाई आप बिल्कुल सही समझे, लेकिन साथियों से हम सिर्फ तारीफ ही नहीं बल्कि हम तो तनकीद के भी मुंतजिर रहते हैं। खैर, तारीफ ही के हवाले से आज हमारे पास एक खूबसूरत कहानी है साथियों के लिए। साथियों, एक नौजवान कॉलेज से ग्रेजुएट होने वाला था। बहुत महीनों से डीलर के शोरूम में खूबसूरत स्पोर्ट्स कार पे उसकी नजर थी। वो जानता था कि उसका बाप ये कार खरीद सकता है, इसलिए उसने कह दिया कि वो ये कार चाहता है। ग्रेजुएशन का दिन आ गया। नौजवान इस इंतजार में था कि उसका बाप उसके लिए ये कार खरीदेगा। आखिरकार ग्रेजुएशन वाले दिन की सुबह बाप ने बेटे को बुलाया और कहा कि इतने लायक बेटे पे उसे बहुत फख्र है और कि वो उसे कितना ज्यादा प्यार करता है।
दोस्त, बाप ने बेटे को एक बहुत ही खूबसूरत सा डिब्बा पैक किया हुआ दिया। बेटे ने मायूसी से डिब्बा खोला तो उसमें चमड़े की जिल्द की खूबसूरत बाइबल मुकद्दस रखी हुई थी जिसपे उसका नाम खुदा हुआ था। बेटा गुस्से से चिल्लाया और कहा, इतनी दौलत होने के बावजूद भी तुमने मुझे सिर्फ बाइबल मुकद्दस की ये जिल्द दे दी। उसने वो तोहफा वहीं रख दिया और घर से बाहर निकल गया।
साथियों, बहुत साल गुजर गए। अब वो नौजवान एक कामयाब ताजर बन चुका था। उसका अपना कारोबार था, खूबसूरत घर और खानदान। अब उसे एहसास हुआ कि उसका बाप बूढ़ा है, इसलिए उसे उसके पास जाना चाहिए। ग्रेजुएशन वाले दिन के बाद उसने बाप को कभी न देखा था। वो इसी तैयारी में था कि उसे एक टेलीग्राम मिला कि उसका बाप वफात पा चुका है और अपने वसीयतनामे में उसने अपनी तमाम विरासत अपने बेटे के नाम कर दी है, जिसके लिए उसे जल्द घर आके उसे संभालना है।
दोस्त, जब ये नौजवान घर आया तो बहुत उदास और परेशान हुआ। उसने अपने बाप के अहम कागजात की वर्क करदानी शुरू कर दी। उसे वहां पर वही बाइबल उसी हालत में मिली जिसे उसने बहुत साल पहले छोड़ा था। उसने बाइबल मुकद्दस खोलकर वर्क उलटने शुरू किए। उसके बाप ने एक आयत के नीचे लाइन लगाई हुई थी जो मुकद्दस मत्ती के सातवें बाप की ग्यारहवीं आयत थी।
साथियों, आयत कुछ यूं थी, बस जबकि तुम जो बुरे हो अपने बच्चों को अच्छी चीजें देनी जानते हो तो कितना ज्यादा तुम्हारा बाप जो आसमान पे है उन्हें जो उसे मांगते हैं अच्छी चीजें ना देगा। जो ही उस नौजवान ने ये अल्फाज पढ़े, बाइबल के कवर के अंदर से कार की चाबी गिर गई। उसके साथ डीलर के नाम का टैग था, वही डीलर जिसके पास स्पोर्ट्स कार्स थी, जिसकी उसे ख्वाहिश थी। टैग पे उसकी ग्रेजुएशन की तारीख भी लिखी हुई थी और ये अल्फाज के कुल अदायगी हो चुकी है।
साथियों, कितनी मर्तबा हम खुदा की बरकात को भी यूं ही ठुकरा देते हैं क्योंकि वो हमारी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं होती। लेकिन एक बात याद रखिये कि वो तमाम चीजें जो आपके पास अभी मौजूद हैं, उनमें से भी बाज चीजें ऐसी हैं जिनकी कभी आपको ख्वाहिश थी।
साथियों, अगर आपका तोहफा इस तरह पैक नहीं किया गया जैसे आप चाहते हैं, इसलिए चूंकि ये बेहतर तौर पर पैक किया गया है। हमेशा छोटी और मामूली चीजों को सराहने की कोशिश कीजिए क्योंकि साथियों, बाज दफा इन्हीं की बदौलत हमें बड़े बड़े तहाइफ देखने नसीब होते हैं।
सारा, इस बात से मुझे थोड़ा सा अफसोस भी हो रहा है क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी चीजों की ख्वाहिश करते हैं लेकिन किसी की जानिब से छोटे तहाइफ या मेहरबानियों की कदर नहीं करते। इस तरह इन इंसानों की भी कदर नहीं की जाती जो बड़े प्यार से ये तहाइफ देते हैं।
तो भाई आइए हम हर छोटी से छोटी चीज या मेहरबानी के लिए दूसरों के शुक्रगुजार हों और उनकी कदर करें, खासतौर पर जब खुदा हमें अपनी मेहरबानियों और बरकात से नवाजता है तो हमें उसके कितने शुक्रगुजार होना चाहिए, अगरचे वो हमारी तवक्कात के मुताबिक भी न हो।
लेकिन साथियों, हम खुदा की राहें और उसके ख्यालात नहीं जानते। जैसे कि आपने उस नौजवान का वाकया सुना, अगर हम उसकी मेहरबानियों को सराहें तो देखेंगे कि वो हमें हमारी तवक्कात के मुताबिक बल्कि उनसे बढ़कर हमें सिला देता है जिसका आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। लेकिन हमारे सोचने, परखने और देखने का अंदाज फर्क है।
तो आइए साथियों, फिर जिंदगी में हर एक चीज की कदर करना सीखें। समय रेडियो वेरितास एशिया के उर्दू सर्विस आपसे मुखातिब है और आप प्रोग्राम सुन रहे हैं रोशन राहें, जिसमें हमने सराहने की कदर पे गुफ्तगू की। इसी गुफ्तगू को हम मजीद आगे बढ़ाएंगे लेकिन अब हम देखेंगे कि कैसे हमें उन सब चीजों को सराहना है जो हमारे पास हैं।
बिल्कुल दोस्त, बाज दफा हमें उन चीजों का अंदाजा या कदर नहीं होती जो हमारे पास होती हैं, लेकिन दूसरे इस बात का अंदाजा लगाते हैं। इस हकीकत को वाजे करने के लिए हम आपको सुनाई देते हैं एक खूबसूरत सा वाक्या।
साथियों, एक रोज एक अमीर खानदान का शख्स अपने बेटे को किसी गांव की सैर करवाने गया, ताकि बेटे को दिखाए कि लोग किस कदर गरीबी की जिंदगी बसर करते हैं। वो एक बहुत ही हलीम और शरीफ किसान के घर एक दिन और एक रात रहे। वापसी पे जब वो घर पहुंचे तो बाप ने बेटे से कहा कि इस सैर के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। बेटे ने जवाब दिया, बहुत खूब अब्बा जान।
दोस्त, बाप ने फिर कहा, तुमने देखा वो लोग कितने गरीब थे। बेटे ने हाँ में जवाब दिया। बाप ने एक और सवाल किया, तुमने क्या सीखा। बेटे ने जवाब में कहा, मैंने सीखा कि हमारे पास सिर्फ एक ही कुत्ता है जबकि उनके पास चार हैं। हमारे घर में एक फवारा है जबकि उनके यहाँ नदी है। हमारे घर में बाहर के लैंप हैं जबकि उनके पास सितारे हैं।
साथी उसने मजीद कहा, हमारा बाग सिर्फ हमारी मलकियत की हद तक है जबकि उनके यहाँ तो सब्जा ही सब्जा है जिसकी कोई हद नहीं। बेटे के जवाब के बाद बाप ने मजीद कुछ न कहा। फिर बेटे ने कहा, अब्बा जान शुक्रिया, आपने मुझे दिखाया कि हम कितने गरीब हैं।
साथियों, क्या ये सच नहीं कि ये सब कुछ आप पे है कि आप जिंदगी को किस तरह देखते हैं। एक शख्स अपने आप से पूछ सकता है कि क्या ही अच्छा हो अगर आप उसके लिए शुक्रिया अदा करें जो कुछ आपके पास है, बजाय उसके कि आप ज्यादा की ख्वाहिश करें।
जी साथियों, जो कुछ आपके पास है उसे सराहिए। दौलत आपकी नजर में है या फिर यूं कह लीजिए ये आप पे मुनहसर है कि आप दौलत को किस तरह देखते हैं। क्योंकि साथियों, बाज दफा हमारे पास सब कुछ होता है लेकिन हम उससे मुतमईन नहीं होते, क्योंकि हमारे लिए वो चीजें मानी नहीं रखती, हम उन्हें दौलत नहीं समझते। लेकिन उस लड़के ने हमें बहुत ही अच्छा दर्श दिया। उसने गांव के लोगों की जिंदगी देखी और अंदाजा लगाया कि वो किस कदर दौलत से मालामाल हैं, शहर की जिंदगी से भी ज्यादा। शहर में उनके घर में जो चीजें थी वो महदूद किस्म की थी, लेकिन इन चीजों की बदौलत वो अमीर घराना कहलाते थे। गांव के लोग उनकी नजर में गरीब थे।
लेकिन दोस्तों, उस लड़के ने अंदाजा लगाया कि बनिस्बत गांव के लोगों के वो ज्यादा खुशकिस्मत नहीं जिन्हें वो गरीब जानते थे। लड़के ने अपने बाप को भी ये सोचने पे मजबूर कर दिया। दौलत सिर्फ इन महदूद चीजों का नाम नहीं, बल्कि दौलत को समझने के लिए हमारी नजर वसी होनी चाहिए।
फ्रांसिस, मैं सोच रही हूँ कि मुआशरे पे अगर नजर दौड़ाई जाए तो हमें ऐसी बहुत सी मिसालें मिलेंगी। बहुत से बच्चे और नौजवान अगरचे घरों में बहुत अच्छी जिंदगी गुजारते हैं, उन्हें सब कुछ मिलता है, लेकिन वो फिर भी ये सोचते हैं कि उन जैसे दूसरे नौजवान और बच्चे उनसे ज्यादा खुशहाल हैं, उनके पास वाफिर मकदार में चीजें हैं, वो ऐश कर रहे हैं। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि जो चीजें उनके पास हैं शायद वो दूसरों को नसीब नहीं।
सर, ये बिल्कुल सच है। बस लोग अपने घरों में इतने खुशहाल होते हैं कि उन्हें किसी चीज की कमी नहीं होती। खुदा ने उन्हें हर तरह की नेमतों से नवाज रखा होता है, लेकिन वो फिर भी शिकायत करते हैं। यकीन जानिए, मुझे उनकी ये हालत देखकर तरस आता है और दुख भी कि आखिर ये मजीद क्या चाहते हैं। क्या ये नहीं समझते कि जो चीजें उनके पास हैं दूसरे उनसे महरूम हैं और कि दूसरों के शायद उनसे भी ज्यादा मसाइल हों।
कभी ऐसा भी होता है कि लोग अपनों से ज्यादा खुश नहीं होते, वो हमेशा दूसरे लोगों के गुण गाते हैं, यानी उन्हें रिश्ते नातों की कदर नहीं होती जो कि खुदा की तरफ से नेमत और तोहफे हैं। अगर देखा जाए तो खानदान और रिश्ते भी एक किस्म की दौलत हैं। इसका अंदाजा वही लोग लगा सकते हैं जो इनसे महरूम हैं और जिन्हें कोई पूछने वाला नहीं।
सरल, सादा और आसान अल्फाज में हम यूं कह सकते हैं कि जो कुछ भी खुदा ने हमें दिया है या जिस भी हालत में उसने हमें रखा है, उसके लिए हमें उसके शुक्रगुजार होना चाहिए और उसे सराहना चाहिए।
फ्रांसिस, जब हम खानदान की बात कर रहे थे तो मैं एक बात कहना भूल गई थी कि खानदानी इकदार भी एक तरह से दौलत होती हैं। बहुत से खानदान उन इकदार से महरूम होते हैं जो हमारे अपने खानदान में होती हैं, यानी शराकत, प्यार, मोहब्बत, इत्तेहाद और इज्जत वगैरह। लेकिन हम इन चीजों को नजरअंदाज करते हैं, हालांकि हमें इन इकदार की नशोनुमा में मजीद किरदार अदा करना चाहिए।
दोस्त, वाकई इकदार की दौलत से मालामाल लोग ही हकीकत में दौलतमंद हैं। वो खानदान जिसमें इकदार नहीं पाई जाती एक तरह से गरीब और नादार लोग होते हैं। उन्हें ये नहीं मालूम कि मादी चीजों की निस्बत खानदानी इकदार ज्यादा अहमियत रखती हैं। इत्तेहाद, शराकत, प्यार और मोहब्बत की बदौलत वो दूसरी दौलत भी कमा सकते हैं, लेकिन लड़ाई झगड़े उन्हें बर्बाद कर देते हैं और खानदानी लड़ाइयां एक तरह से बर्बादी का सबब बनती हैं।
साथियों, हमने सराहने की बात की, तो आइए जिंदगी में जो कुछ भी हमारे पास है, जो अच्छाई हम दूसरों में देखते हैं या जो अच्छी चीज देखते हैं, उसे सराहने की कोशिश करें, क्योंकि इससे हमारी शख्सियत पे भी अच्छा असर पड़ेगा।
और जिस भी दौलत से खुदावंद ताला ने हमें मालामाल किया है, उसके लिए खुदावंद के शुक्रगुजार हों, और खास तौर पर खानदानी अफराद और रिश्तों के लिए। आइए हम इंसानों को भी सराहें, उन्हें अहमियत दें, दूसरों की अच्छी आदत और सिफात को सराहें और उन्हें मजीद कुछ करने की हिम्मत दें।
साथियों, जो भी अच्छे इकदार हमारे खानदानों में पाई जाती हैं, उनके लिए भी खुदावंद ताला का शुक्रिया अदा करें और उन्हें मजीद निखारने की कोशिश करें, ताकि इनकी रोशनी से दूसरों की राहें भी रोशन हों। क्योंकि साथियों, यही इकदार हमारे खानदानों का सरमाया है और इन्हीं से खानदानों का नाम और इज्जत है, यही खानदान की पहचान है। इसकी कदर वही खानदान जानते हैं जिनका शहराजा बिखर चुका है, जिनके बच्चे बागी हो चुके हैं और जिनकी कोई पहचान नहीं। खुदा करे इकदार की बदौलत हमारे खानदानों के नाम रोशन हो। उम्मीद है साथियों, हमारा ये आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा, हमें जरूर लिखिएगा। इसी के साथ प्रोग्राम रोशन राहें इख्तिताम को पहुंचता है। सारा जॉन और फ्रांसिस सेवियर को इजाजत दीजिए।
शुक्र करो।